157-158 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की कुछ बुनियादें, यानी आपको मुझे हुक्म है ना कि इत्तबियो, इत्तबा करो, पैरवी करो। एक है अतीयो और एक है इत्तबा। यह आयत कुरान की खूबसूरत तरीन आयतों में से एक आयत है। अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूल, वो लोग जो पैरवी करते हैं रसूल की, जो नबी भी हैं और उम्मी भी हैं, और जिसका तذकरा वो अपने हाथ तौरात और इंजील में लिखा पाते हैं। खसाइस क्या थे नबी के? या मुरहुम बिल मारूफ व यनहाकुम अनिल मुनकर, यानी आज अगर आप और मैं देखें तो नबी सल्लम की शान के क्या पहलू थे। पहला हुक्म, पहली आपकी शान क्या है कि आप नेकी का हुक्म देते और बुराई से रोकने का हुक्म देते थे। अल्लाह आज मुझे आपको भी इसी के लिए चुन ले। दूसरा आपका कारनामा क्या था कि पाकीज़ा चीज़ों को हलाल और नापाक चीज़ों को हराम करने वाले थे, करार देने वाले थे, यानी अल्लाह के नबी ने ये काम किया। तीसरा आपका कारनामा क्या था? बिदात, तवहमात और ज़ालिमाना निज़ाम के बोझ को नौइंसानी से दूर किया। अगलाल और तौक और इसर कौमों ने अपने गलों में डाले हुए थे। अल्लाह ने आज नबी सल्लम का ये मिजाज और आपका ये काम, या अल्लाह के नबी की ये शान हमारे सामने क्यों रखी? बस अपने लिए इसको हदफ बनाइए। आज के बाद मेरी ज़िंदगी का भी यही मकसद हो, इसीलिए फिर आगे फलाह पाने वालों की सिफात दी। क्या करो? नबी सल्लम पर ईमान लाओ और आपका अदब और एहतराम करो। यानी आज नबी सल्लम पर ईमान लाने वाले तो 2 बिलियन हैं, आपका अदब और एहतराम करने वाले भी उसमें से बहुत से हैं माशाल्लाह, लेकिन आपके मिशन पे चलने वाले नहीं हैं, या मुरहुम बिल मारूफ वाले नहीं हैं और लोगों से बोझ नहीं उतारते। तो खुलासा क्या हुआ यहाँ तक की बात का? कि अल्लाह के नबी एक रहमत है और उम्मत मुस्लिमा को इस रहमत से फ़ायदा उठाने और दूसरों को फ़ायदा देने की कोशिश करनी चाहिए। फिर दोबारा बनी इसराइल पे कमेंट है, उनकी नाशुक्री का तذकरा है 159 से 162 में, यानी ये पूरी हिस्ट्री हम पढ़े हैं ना उनकी। वमिन कौमी मूसा उम्मतुन, अल्लाह ताला कहते हैं कि मूसा की कौम में एक गिरोह था जो लोगों को हक़ की तरफ गाइड करते थे और उसके साथ वो अदल भी करते थे, यानी उसका हक़ अदा करते थे। फिर हमने उनको 12 गिरोहों में बांट दिया। यानी यहाँ फिर वादिय तीह में जो अल्लाह की तरफ से इनामात थे उसका तذकरा, कि 12 गिरोहों के लिए 12 चश्मे दे दिए। इससे ऑर्गेनाइजेशन समझ आती है, इंतज़ामी उमूर बड़े दुरुस्त होने चाहिए वरना बड़ी से बड़ी चीज़ बेकार हो जाती है। फिर उसके बाद इसमें वो वक्त भी आ गया, वह इस कील अलहुमस्कुनु हाजिहिल करिया, यानी 40 साल तीह के गुजर गया। इस दौरान वो नस्ल, वो जनरेशन जिन्होंने जिहाद का इनकार किया था, वो तबाह हुई, वो ख़त्म हो गए, उनके यंगस्टर सामने आ गए। और यहाँ कहने की इजाज़त दीजिए, आज उम्मत मुस्लिमा में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। जो लोग काम नहीं करते ना, फिर अल्लाह कुछ अरसे के बाद उनकी औलादों से वो काम ले लेता है। वो सब ख़त्म हुए। मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल भी इसी अरसे के दौरान हुआ। यूशे बिन नून उनके बाद नबी बनाकर भेजे गए, जो हज़रत मूसा के शागिर्द भी थे, जो सूरत काहफ में किस्सा है मूसा और खिजर है ना, तो वो उसमें जो फतन साथ थे वो हज़रत यूशे बिन नून थे। वो उन्होंने यंगस्टर्स को अट्रैक्ट किया और इसी तरह से होते हवाते उनकी माइयत में, उनकी लीडरशिप में वो उनकी यूथ फोर्स तैयार हुई। उन्होंने जाकर कौमी मालका पे हमला किया, अल्लाह ने फतह दे दी। उसी का तذकरा है, व इस कील अलहुमुस्कुनु हाजिल करिया वकुलू मिनहा हैसु शितुम, का जब हमने कहा इस बस्ती में दाखिल हो जाओ और जहाँ से चाहो खाओ और कहते रहो कि हेततुन, हमारे गुनाह झाड़ दे और दाखिल हो जाओ दरवाजे में सजदा करते हुए। यानी जब अल्लाह कोई कामयाबी दे तो उस वक़्त इंसान के अंदर आजजी होनी चाहिए। और फिर क्या कहो? नगफिर लकुम, हम तुम क्या किया, यानी तुम सजदा करो, हम तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देंगे और तुम्हारी ख़ताओं को दूर करेंगे और अनकरीब हम ज़्यादा देंगे मुहसिनों को। अब सीधा सा हुक्म था कि अल्लाह ने तुम्हें इतने साल के बाद बैतुल मक़दस वापस दिया, तुम यहाँ अंदर जाओ तो आजजी के साथ जाओ, लेकिन इस कौम के मिजाज में बात को बदलना है। फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम, फिर बदल डाली बात उन लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया उनमें से, कौलन गैरल्लज़ी क़ीला लहुम, उस बात के सिवा जो उनको कही गई थी। हित्ता को क्या कहने लगे? हिंततुन, और बड़ा कुछ, दाना बाली में ये वो, यानी इनके दिमाग पे खाना पानी सवार था। अल्लाह ताला ने इनके ऊपर दोबारा आसमान से अजाब डाल दिया। क्या पता चला कि जिनको नहीं समझ आनी होती ना, एक से जायद बार भी समझा दिया जाए तो वो बात को नहीं समझते। आगे वो किस्सा आ रहा है जिसको हम सब अपनी जुबान में उर्फे आम में मछलियों के वाक़े या बंदर वाला किस्सा कहते हैं। आयत 163 से 168, टॉपिक क्या है, बुराइयों से रोकना क्यों ज़रूरी है। तो वसलहु मन क़रियतिल्लती कानत हादिरतल बहर। अब बनी इसराइल का ये वो दौर है कि मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यूशे बिन नून, इन सब का दौर चला गया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर आ गया। एक बस्ती थी एक दरिया के किनारे और उनका सारा माश जो था वो मछलियाँ पकड़ने पे था। हफ्ते का दिन इन लोगों ने खुद ही चुना था कि हम उस दिन काम नहीं करना चाहते। अल्लाह ने कहा ठीक है, कुछ नहीं करोगे। अब जब उस दिन मछलियों को देखते तो वो बहुत सारी होती, जब बहुत सी मछलियाँ होती तो इनके मुंह में पानी आता, राल टपकती। खैर इन्होंने एक हीला किया, जुमे को जाकर जाल लगाते, हफ्ते को कुछ नहीं करते थे। जो ही हफ्ते का दिन ख़त्म होता तो जाकर इतवार को जाल में फंसी हुई मछलियाँ ले आते। घरों में बात फैल गई, लोगों ने इनको समझाना चाहा, कहा नहीं 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 हमने हफ्ते को तो कुछ नहीं किया, यानी इन्होंने अल्लाह के हुक्म को तोड़ मोड़ दिया। इस पे तीन गिरोह हो गए, एक जिन्होंने ये काम किया, दूसरे वो जिन्होंने इनको मना किया, तीसरा वो गिरोह था जिन्होंने कहा हम क्यों कुछ गए। ठीक है, सबको पता है अल्लाह की तरफ से पकड़ जब आई तो सिर्फ एक गिरोह बचा जिन्होंने बुराई से रोका। ये है सारा किस्सा, और बाकियों को बंदर बना दिया, और वो बंदर फिर 2-3 दिन में ख़त्म हो गए। इसमें जो मेरे आपके लिए बहुत ही खूबसूरत जुमला है वो क्या है, माजिरतन इला रब्बी को। आज लोग कहते क्या फ़र्क पड़ता है, लोग बदलते तो है नहीं, क्यों इतनी गले फाड़ें, क्यों लोगों को पढ़ाएं बुलाएं, इतना इहतमाम अब करते हैं, इतना एफर्ट, वो कोई नहीं, लोग बदल रहे, लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो आप और मैं अपने लिए ये लिख लें माजिरतन इला रब्बी को, कल हम अल्लाह को बता सकेंगे कि जब लोग बुराइयों के इश्तिहार बनते थे तो हम उस वक़्त नेकियों को फैलाने की कोशिश करते थे। और दूसरी बात है अल्लाहुम यत्तकून, शायद किसी को फ़ायदा भी हो जाए, किसी एक को तो फ़ायदा होता ही होगा ना। और आगे फिर अल्लाह ने अपना कानून दे दिया कि जब वो नसीहत को भूल गए तो अल्लाह ने उनके साथ क्या मामला किया। क्या पता चला कि अल्लाह ताला कौमों को बार बार संभलने का मौका देते हैं। फिर आगे 169 आयत में किताब के नाअहल वारिसों की बात है, फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन, फिर उनके बाद ना खल्फ औलाद पैदा हो गई जो किताब के वारिस बनाए गए, लेकिन क्या करते थे, या खुजून आरादा हाजल अदना, रिश्वत लेते थे, दुनिया का माल लेते थे, हराम लेते थे, और जब उनको कहा जाता था कि ये तुमने क्या किया, वह यकूलू ना सयुग़फ़रू लना, वो कहते थे कोई बात नहीं, अनकरीब अल्लाह में माफ़ कर देगा। और जब दोबारा उनके पास कोई दुनिया का माल लेने का मौका आ जाता उसी जैसा, तो फिर वही काम करते। फिर उनको कहा जाता था कि क्या तुमसे किताब में वादा नहीं लिया गया था, क्या आज उम्मत मुस्लिमा का ये हाल नहीं, हराम भी लेंगे हराम भी खाएंगे, और जब कहा जाए क्या तो कहते अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। तो ये आयत नोट कीजिए अपने नंबर के साथ। फिर आयत 170 से 171 अल्लाह के महबूब बंदों की सिफात का तस्करा है, वो कौन होते हैं, वल्लज़ीन युमस्सिकून बिल किताब, किताब से चिपक जाते हैं, यानी सिर्फ रमजान में नहीं कुरान पढ़ते, पूरा साल पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ते ही नहीं समझते भी हैं, और सिर्फ दौरे कुरान नहीं करते, वो इसके बाद सबीलुल जन्ना कोर्स भी करते हैं जो लफ्जी वजाहत के साथ सीखते हैं ताकि वो अरबी के कुरान को उर्दू में समझ सकें, और नमाजों को भी कायम करते हैं। तो हम ऐसे इसलाह करने वालों के अजर ज़ाया नहीं करते। और दोबारा बनी इसराइल की तरफ इशारा करके कहा, जब हमने उनके ऊपर पहाड़ को खड़ा कर दिया तो गोया कि उनके ऊपर एक साहिबान था, करीब था कि ऐसे लग रहा था कि वो गिर जाएगा, और हमने इनको क्या कहा, खुजू मा तैनाकुम बिकुव्वा, यानी अल्लाह ने मैदान बनी इसराइल के लिए कोहे तूर को जो सर पे मुसल्लत किया, ये असल में एक किस्म की एनालॉजी भी है, और हमारा ईमान है कि अगर ऐसा हुआ तो वो हुआ कि तुम्हारे सर पे किसी को मुसल्लत कर दिया जाए, क्या तुम फिर ही नेकी करोगे, इसके बगैर तुम नेकियां नहीं कर सकते। फिर आगे एक बहुत ही अहम आयत है, इसका नंबर नोट करें और अपने रिमाइंडर्स में भी ज़रूर ये लिखा करें, अहदे अलस्त की याद दहानी। अल्लाह ने हर इंसान से उसकी रूह की कैफियत में एक अहद लिया था, जिसका मैंने पीछे भी 2-4 दफ़ा तذکرہ किया। आज उस आयत का नंबर नोट कीजिए, वइज़ अख़ज़ रब्बुक मिन बनी आदम, और जब लिया आपके रब ने बनी आदम से उनकी पुश्तों में एक अहद और उनकी औलादों से भी, और उनको गवाह बनाया, और ये वादा यह अहद क्या था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। तो अहदे अलस की याद दहानी क्या बताती है, कि अल्लाह ने इस अहदे अलस, अलस समझ गए होंगे ना, कि नहीं हूँ क्या, आ क्या, लस्ता नहीं मैं, ये आपकी मेरी इंस्टिंक्ट में अल्लाह ने इंसान की फितरत में अपनी पहचान रख दी है। हज़रत ईसा भी इसी पहचान की वजह से बचपन में बोले थे इन्नी अब्दुल्ला। आज भी आपके घरों में पैदा होने वाले जो बेबीज़ हैं ना, अगर उनको ज़ुबान मिल जाए तो वो इन्नी अब्दुल्ला कहेंगे। वो इसी अहद की वजह से है। क्या पता चला कि इंसान हक को देखकर अपने रब को पहचान लेता है। फिर इसके बाद इस अहद को भूलने वाले ख्वाहिश परस्त कैसे बनते हैं, इसका तज़किरा एक बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी से दिया जा रहा है। आयत 173 से 174 में अल्लाह ताला ने इशारा कर दिया कि कुछ लोग जो आज शिर्क करते हैं उनको इस अहद से क्या फ़ायदा हुआ। तो उसका जवाब है औ तकूलु इन्नमा अशरका बाउना मिन कब्ल। अगर अल्लाह ताला ये प्रोग्रामिंग में ना डालते, देखिए आज की ज़बान में समझिए कि कंप्यूटर के अंदर अगर अल्लाह प्रोग्रामिंग ना करते अहदे लफ्ज़ की, तो कल लोगों ने कहना था जी हमारे तो माँ बाप शिर्क करते थे तो हमने भी किया, हमारे माँ बाप हिंदू थे हम भी हिंदू हो गए, वो मुसलमान थे हम भी मुसलमान हो गए। तो हर बंदा अपने आमाल का खुद जवाब दे है। फिर आयत 175 से 179 में एक वर्स्ट किरदार है जो दुनिया के लिए जीता है, जिसको अल्लाह ने इल्म दिया लेकिन वो इल्म को दुनिया कमाने का जरिया बनाकर हिदायत से दूर हो जाता है। और इस शख्स की बहुत ही कह लीजिए कि मिसाल दिल को तकलीफ़ देती है कि उन पर पड़ी ये खबर उस शख्स की जिसको हमने अपनी आयतें दी लेकिन उनमें से निकल गया और फिर उसके पीछे शैतान लग गया और वो भटक गया। अगर हम चाहते तो उसको इज्जत दे देते इसी इल्म से, लेकिन वो तो क्या हुआ, असल लफ्ज़ जो इसका आपने नोट करना है अखलद इल अर्द, मटीरियलिस्टिक हो गया, मादा परस्त हो गया, व तबा हवा हो, और ख्वाहिश के पीछे लगा। यानी दो चीज़ें बंदे को इल्म आने के बावजूद भी भटका देती हैं, हुब्बे दुनिया, दुनिया की मोहब्बत, और एक हवा परस्ती, ख्वाहिश परस्ती। फिर उसकी मिसाल तो कुत्ते जैसी है, अगर उस पर बोझ डाल ले तो भी वो जुबान लटकाता है और अगर उसको छोड़ दे तो भी जुबान लटकाता है। कुत्ता सिंबल है लालच का। कुत्ता कुत्ता रहे तो ठीक है, लेकिन जब इंसान में लालच आ जाए और उसका कभी पेट ही ना भरे तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा अहम आयते हैं। मेरा दिल है कि आप इसकी डिटेल तफसीर ज़रूर सुनिए, क्योंकि इसमें एक पैगाम है अल्लाह ताला की तरफ से। और वो क्या कि हमने कुछ लोग जहन्नुम के लिए पैदा किए, उनका हाल क्या है, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा। जब बंदा अपने दिल से गौर व फिक्र का काम ना ले और आंखों से हक को ना देखे, कानों से हक को सुने ना ने, तो लाइक अकल अनाम, चौपाइयों जैसी ज़िंदगी है। देखिए आज भी एक स्लोगन है ई ड्रिंक बी मैरी, खाओ पियो और शादी करो। क्या जानवरों की तरह इंसान का भी यही मकसद तख्लीक है? तो नहीं। इसलिए फिर आगे 175 से 179 में जो दुनिया के लिए जीते हैं उनके लिए क्या पैगाम है कि जब आप मकसद हयात से मुनहरिफ हो जाते हैं, उससे मुंह फेर लेते हैं, तो जानवरों से भी बदतर हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें असफलो साफिलीन में होने से बचाए। आयत 180 में अल्लाह ताला को उसके अच्छे नामों से पुकारने का तज़किरा है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, बस पुकारो उसको उनके साथ और छोड़ दो उनको जो इल्हाद करते हैं। अब सवाल है कि इल्हाद क्या है? अल्लाह के नामों में खुद साख्ता तब्दीली करना, अल्लाह ताला की सिफात की खुद साख्ता तावील करना, और इसी तरह से अल्लाह ताला की सिफात में दूसरों को शरीक करना, यानी अल्लाह को जो चीज़ें अल्लाह सुबहान ताला के साथ ख़ास है ना, उनको दूसरों में भी ढूंढ देना। इस पे मैं फिर रिकमेंड करूँगी अमेज़ बाय अस्माउल हुस्ना। आप यूट्यूब नूरुल-कुरआन टीवी पे जाके सर्च कर लें, प्लेलिस्ट में आपको अस्माउल हुस्ना मिलेगा। आप सिर्फ उसके शुरू के 5-6 लेक्चर सुनिए जिसमें अल अस्माउल हुस्ना की अहमियत और उसकी इस्लाम में जगह क्या है। उसके बाद तो वाकई हाथ पांव पड़ जाते हैं कि हमने तो अभी तक अशरफुल उलूम नहीं सीखा, अपने रब का इल्म नहीं सीखा, तो किताब हम कहाँ सीखेंगे। फिर उसके बाद आयत 180 से 186 में दरसे इबरत है। क्या कि जब कौमें अल्लाह ताला के नबियों को झुठला देती हैं तो फिर अल्लाह ताला उनसे इंतकाम कैसे लेता है? बेसिकली अगर आप इस आयत में देखिए कि वमिमन खलकना उम्मतन में एक जुमला है सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यालमून, इसको कहते हैं इस्तिदराज, धीरे धीरे किसी को पकड़ना। कोई भी एकदम नहीं बहकता, होता क्या है कि शैतान सबसे पहले बुरे आमाल को खूबसूरत करके दिखाता है और यहाँ तक कि उनको हलाकत में डाल देता है। फिर नाफरमानी जब बहुत होती है तो फिर अल्लाह ताला इनको मज़ीद नेमते देता है, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही, हम तो किसी से नाराज़ हो ना तो जो दिया वो भी वापस ले लेते हैं, मंगनी छूटती है ना तो वो सब जोड़े कपड़े जेवर वापस आ जाते हैं, अशरफियाँ भी वापस आ जाती हैं। अल्लाह कहते तुम मुझसे नाराज़ हो, मुझे नाराज़ करो, ये पकड़ो और भी ले लो। और जब अल्लाह नेम तुम्हें फराखी और वसत देता है तो ये शुक्र अदा करना भूलते हैं। आज भी देखिए कम पैसे कम नेमतों के साथ अल्लाह को याद रखना आसान है, और जब दिन ब दिन हमारी दुनिया बढ़ती जाती है नमाजें भी नहीं रहती पूरी, इल्ला ये कि अल्लाह जिससे राज़ी हो। तो क्या पता चला कि अपने आप को बचाना है इन चीज़ों से। और फिर आयत 187 से 188 में नबी सल्लम को इजहारे आजजी सिखाई गई, जो कि बहुत पहले से भी थी, यहाँ एक ख़ास तरीके से। और वो क्या है कि लोग आपके बारे में कुछ भी कहते रहे। आज भी आप देखिए नबी सल्लम की ज़ात के बारे में मुसलमान एग्जैजुरेशन का शिकार होते हैं, लेकिन अल्लाह नबी की ज़ुबान से जो बात सिखा रहे, एक तो इससे पता चलता है कि अल्लाह के नबी को क़यामत के आने का वक्त नहीं बताता। गैब जब तक अल्लाह ना दे किसी को, जितना दे जब दे उतना ही मिलता है, हत्ता के अम्बिया कराम को भी। लोग नबी सल्लम के बारे में क्या कहते हैं, जी आप नफ़े नुकसान के वारिस हैं। हालांकि देखिए 188 में अल्लाह क्या कह रहे, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़न, कह दीजिए कि मैं इख्तियार नहीं रखता अपने नफ्स के लिए नफ़े और ज़रर का, हाँ मगर माशाअल्लाह जो मेरा रब चाहे। और मैं तो गैब की बहुत सारी बातों से बहुत फ़ायदे उठा लेता, मुझे तो कोई तकलीफ़ भी ना पहुंचती। क्या पता चला कि अगर अल्लाह के नबी को गैब पता होता तो क्या उहद में आपका दान टूटता। आप बताइए कि अल्लाह के नबी को कितनी तकलीफ़ें आई मक्का के दौर में, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आती। तो बहरहाल ये एक अकीदे का मौजू है, इसको सुनिए और समझिए। देखिए मीठी मीठी बातें नहीं है, ये बहुत हकीकी बात है। हम अपनी माँ और अपने बाप का सही मुकाम ना पहचानेंगे तो उनकी इज्जत कैसे करेंगे। तो लिहाजा नबी का मुकाम पहचानना है। फिर आगे दोबारा औलादों की बातें आ रही हैं।